अध्याय 5, जापान में राजनीतिक दलों का उदय एवं विकास का शेष भाग। पृष्ठ संख्या 59। मेजी काल में राजनीतिक दल। निम्नलिखित सारणी में मेजी काल में गठित राजनीतिक दलों का विवरण दिया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि न केवल एक ही राजनीतिक दल का समय समय पर विभाजन हुआ, बल्कि अनेक राजनीतिक दल स्वयं ही समाप्त हो गए, लेकिन फिर भी तीन मुख्य राजनीतिक दल उभर कर सामने आए। मेजी काल में राजनीतिक दलों की सारणी। क्रम संख्या। संस्थापक या नेता का नाम, स्थापना वर्ष, लुप्त होने का वर्ष, दल का नाम। पहला इतागाकी ताइशुके, स्थापना 1881, लुप्त होने का वर्ष 1884, दल का नाम जियुतो यानी उदार दल। दूसरा तारुई तोकीची और आकम तसु ताइशुकु, ये 1882 में तोयो शाकायतो प्राच्य, जिसे समाजवादी दल भी कहते हैं, की स्थापना की, और यह दल 1882 में लुप्त हो गया। तीसरा ओकुमा सीगे नोबू, जिन्होंने 1882 में कायशिंतो यानी प्रगतिशील दल की स्थापना की। इनो उए को उरु 1890 में आयकेन जियुतो यानी संवैधानिक दल की स्थापना की। इनो उए को उरु ने ही 1891 में जियुतो यानी उदार दल की स्थापना की। छठा ओकुमा शिगे नोबू, इन्होंने सिंपोतो यानी विकासशील दल 1896 में स्थापना की। सातवां इतागाकी, इन्होंने 1898 में कैन सेइतो यानी संवैधानिक दल, यह दल जियुतो और कायशिंतो के गठबंधन से बना था और यह दल 1898 में ही लुप्त हो गया। आठवां ओकुमा ने 1898 में केनसिये होन्तो यानी वास्तविक संवैधानिक दल, यह विकासशील दल कैनसेइतो के विभाजन से उत्पन्न हुआ था। नौवां इतो हीरो बूमी, इन्होंने 1900 ईस्वी में रिककेन सेयुकाय यानी संवैधानिक सरकार के मित्र, यह कैनसेइतो से उत्पन्न हुआ राजनीतिक दल था, इसकी स्थापना की। कोतुकु शुसुई 1906 में निहोन शाकायतो यानी समाजवादी दल की स्थापना की। कोतोकु शुसुई 1913 में दोशीकाय दल की स्थापना की। यह दल कोकुमितो का विभाजित हिस्सा था। अब बारी बारी से विभिन्न दलों का विवरण। जियुतो या उदारवादी दल। 1881 में स्थापित जियुतो प्रथम राष्ट्रीय राजनीतिक दल था। इसकी स्थापना के पीछे यह आंदोलन था जिसे छोटे भूमिपतियों, किसानों और संपत्तिहीन वर्गों ने समुराय, बड़े भूमिपतियों और व्यापारियों के नेतृत्व में शुरू किया था। जियुतो का राजनीतिक दर्शन E.H. नॉर्मन के शब्दों में समझौतावादी, उदारवादी, ऐसा उदारवाद था जिसने मुख्यतया विभिन्न वर्गों के लिए प्रजातंत्र, जन अधिकारों और कार्य करने की स्वतंत्रता प्राप्ति की चेष्टा की। कंसिलिएटरी लिबरलिज्म, ए लिबरलिज्म विच स्ट्रोव प्राइमरली फॉर डेमोक्रेसी, फॉर पीपल्स राइट्स, फॉर फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, ऑल फॉर द रिस्पेक्टिव क्लासेस। इस राजनीतिक दल की स्थापना इतागाकी द्वारा की गई। इसने जनता के स्वशासन, सेल्फ गवर्नमेंट और स्वविचारों को प्रकट करने, सेल्फ एक्सप्रेशन के अधिकार पर बल दिया। जीयूतो के उद्देश्यों में संवैधानिक सरकार की स्थापना, स्वतंत्रता का विस्तार, जन अधिकारों की रक्षा और विस्तार, दूसरे देशों के साथ मैत्री और राष्ट्रीय उन्नति को बढ़ावा देना शामिल था। इसके द्वारा ऐसे संविधान की मांग की गई जो राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा निर्धारित किया गया हो। उस समय की राजनीतिक व्यवस्था से परिचित जीयूतो ने यह कहा कि लोकप्रिय सरकार को समर्थन देने का अर्थ वास्तव में सम्राट को समर्थन देना ही था। एक प्रकाशित संपादकीय लेख जिसका शीर्षक जीयूतो के सम्राट समादर सिद्धांत द इम्पेरर वेनरेशन थ्योरीज ऑफ द जीयूतो था, उसमें लेखक द्वारा यह कहा गया कि जीयूतो की तरह कोई और सम्राट का आदर नहीं करता है। जनता की खुशी और संतुष्टि के माध्यम से हम सम्राट को ही प्रसन्न कर रहे हैं। जीयूतो द्वारा इस अवधारणा को प्रकट किया गया कि लोकप्रिय सरकार के अधीन नागरिक मिलकर शाही इच्छाओं की पूर्ति ही करेंगे। जीयूतो द्वारा यह दावा किया गया कि इस अवधारणा की पूर्ति संभव थी क्योंकि सम्राट समाज की इच्छाओं का ही प्रतिनिधित्व करता था। इस तरह जीयूतो द्वारा जिन विचारों को प्रकट किया गया वे एक दुविधाजनक स्थिति को दर्शाते थे क्योंकि लोकप्रिय सरकार की स्थापना शाही इच्छा पर निर्भर थी। प्रारंभ में इस राजनीतिक दल ने जिन क्रांतिकारी विचारों को प्रकट किया उनके कारण उसे सरकारी कोप का सामना करना पड़ा। 1884 में इसे भंग कर दिया गया और धीरे धीरे इसी में से अनेक राजनीतिक दलों की स्थापना हुई। 1900 में जब से यूकाय का गठन किया गया तब मूल जीयूतो द्वारा रूढ़िवादी विचारधारा को प्रतिपादित किया गया। पृष्ठ संख्या 62। काय शिंतो या प्रगतिशील दल, द प्रोग्रेसिव पार्टी। इस राजनीतिक दल की स्थापना ओकुमा शिगेनोबू ने की। उसे नौकरशाही के अनेक अधिकारियों, बुद्धिजीवियों और औद्योगिक परिवारों का सहयोग प्राप्त हुआ। इस राजनीतिक दल से जुड़े व्यक्ति ऐसे मध्यम वर्ग की तलाश में थे जो नौकरशाही के दमन और जीवितों के अतिशय उदारवाद के बीच की कड़ी हो। इस दल की राजनीतिक विचारधारा मिल, लॉक और स्पेंसर के विचारों से प्रभावित हुई थी। इसके प्रमुख चिंतक फुकुजावा युकीची थे जिनके प्रसिद्ध शब्दों स्वर्ग ने मानव को मानव के ऊपर या मानव को मानव के नीचे नहीं बनाया। हेवन डिड नॉट मेक मैन एवो मैन और मैन विलो मैन ने अनेक को प्रभावित किया। कायशिंतो के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे। पहला, राजकीय परिवार की समृद्धि और प्रतिष्ठा की रक्षा तथा जनता की भलाई। दूसरा, आंतरिक प्रशासन का सुधार और राष्ट्रीय शक्ति का विकास। तीसरा, समाज की विकास दर के अनुरूप मताधिकार का प्रसार। चौथा, केंद्रीय सरकार के हस्तक्षेप पर रोक और स्थानीय स्वशासन की स्थापना। पांच, विदेशी व्यक्तियों के साथ न्यूनतम राजनीतिक संबंधों की स्थापना परंतु व्यापारिक संबंधों का प्रसार। छठा, मुद्रा के संदर्भ में रोकड़ नीति का पालन। इन लोकप्रिय उद्देश्यों के बावजूद इतिहासकार एस्कैल्पिनो के शब्दों में इस दल का उद्देश्य राज सिंहासन की समृद्धि के साथ साथ जन प्रसन्नता को प्राप्त करना था। द पर्पस ऑफ द पार्टी वाज टू प्रमोट द प्रोस्पेरिटी ऑफ द थ्रोन एंड हैप्पीनेस ऑफ द पीपल। जीयूतो की तरह कायशिंतो भी राजनीतिक सिद्धांतों के स्तर पर एक विरोधाभास का सामना कर रही थी। इस राजनीतिक दल को प्रेरणा अंग्रेजी राजनीतिक चिंतन से मिली थी और इसने संसद में राजा के सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया, परंतु सम्राट के प्रति अत्यधिक निष्ठा इस तथ्य की सूचक थी कि जब तक सत्ता पर नौकरशाही का पूर्ण अधिकार था और इसका प्रयोग सम्राट के नाम पर हो रहा था, तब तक कोई क्रांतिकारी परिवर्तन संभव नहीं था। ऋग्वेद 23 ईतो या संवैधानिक शाही दल कॉन्स्टिट्यूशनल इंपीरियल पार्टी उपयुक्त वर्णित राजनीतिक पार्टियों की लोकप्रियता और नीतियों का विरोध करने के उद्देश्यों से सरकार द्वारा 1882 में रिककेन 23 ईतो की स्थापना की गई। ऊपर से इसके नेता मुर्गन सुकौरा तथा मिजुनो तोरोजीरो थे, परंतु वास्तविक नियंत्रण शाही दरबार के आंतरिक अधिकारियों के हाथ में था। इन अधिकारियों में ईतो हिरोबुमि, इनोउए काउरो और यामादा अकियोशी प्रमुख थे। 23 ईतो के घोषणा पत्र में जनता को एक बार फिर सोनोनो आयकोकु अर्थात सम्राट का सम्मान करो, देश से प्रेम करो के नारे तक वापस लाना था। इस राजनीतिक दल द्वारा उन व्यक्तियों की खुलेआम भर्त्सना की गई जो यूरोपीय सिद्धांतों को अपनाकर जनता को गुमराह कर रहे थे। दूसरे शब्दों में इसने जियूतो और कायशिंतो का खुलकर विरोध किया, परंतु सरकारी समर्थन के बावजूद यह दल लोकप्रिय नहीं हो पाया। पृष्ठ संख्या 63। तोयो साकाईतो या प्राच्य समाजवादी दल ओरिएंटल सोशलिस्ट पार्टी तारुई तोकीची तथा आकामत्सु ताइसुके जैसे नेताओं के निर्देशन में तोयो साकाईतो की स्थापना की गई। यह वास्तव में एक किसान दल था जो अपने कार्यकर्ताओं द्वारा नैतिक आचरण के आधार पर कार्य करवाना चाहता था। इस दल का उद्देश्य सभी के साथ समान व्यवहार और जनता को अधिकतम खुशी प्रदान करना था। सरकार द्वारा बहुत शीघ्र ही इसे भंग करने का निर्देश दिया गया। जियू मिंकेन उन्दो तथा जियूतो और कायशिंतो जैसे दलों के प्रति सरकारी नीतियां यद्यपि बहुत कठोर थी, फिर भी बहुत जल्दी ही यह स्पष्ट हो गया कि न तो संविधान देने की मांग को और न ही राष्ट्रीय सभा की स्थापना को अब ज़्यादा देर तक टाला जा सकता था। मेजी संविधान को 1889 में अनुमोदित किया गया और 1890 में प्रथम चुनाव होने के साथ ही जापान में दलगत सरकार की शुरुआत हो गई। दलगत सरकार का आरंभ, बिगनिंग ऑफ पार्टी गवर्नमेंट, राजनीतिक दलों की सफलता सरकार में उनके सक्रिय भाग लेने पर निर्भर करती थी। चुनावों द्वारा यद्यपि यह संभव कर दिया गया, परंतु एस्केल्पिनो द्वारा किए गए एक अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि यह प्रक्रिया इतनी सरल नहीं थी। चुनावों में सरकारी हस्तक्षेप और हिंसा का प्रयोग किया जाता था ताकि सरकारी कृपा पात्र सदस्यों का चुनाव आसानी से हो सके। इसके बावजूद जियूतो और शिंपोतो जैसे राजनीतिक दल चुनावों में न केवल सफल ही हुए बल्कि उन्होंने मंत्रिमंडलों का निर्माण भी किया। अपने एक अध्ययन में एस्केल्पिनो ने 1892 और 1937 के बीच हुए चुनावों का विश्लेषण करते हुए यह स्पष्ट किया है कि धीरे धीरे जापान में द्वैध दल व्यवस्था का प्रसार हुआ। अधिकतर बड़े राजनीतिक दल छोटे छोटे राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त करने में सफल रहे। इसी के साथ जापानी राजनीति में राजनीतिक दलों का योगदान और प्रसार नौकरशाही और गैनरों के प्रभाव पर भी निर्भर था। वास्तव में नौकरशाही का प्रभाव इतना अधिक था कि निर्वाचित सदस्यों को अपनी उपस्थिति व्यक्त करने के लिए उसके साथ गठबंधन करना पड़ा। एस्केल्पिनो ने राजनीतिक दलों और नौकरशाही के बीच निहित संघर्ष को चार चरणों में विभाजित किया। 1894 से 95 तक के प्रथम चरण में दोनों एक दूसरे के विरोधियों के रूप में देखे गए। 1918 तक के दूसरे चरण में राजनीतिक दल नौकरशाही गठबंधन पार्टी ब्यूरोक्रेटिक एंटेंटी स्पष्ट देखा गया। इसके दौरान सच्चो कुलीन तंत्र ने राजनीतिक दलों पर अपना अधिकार स्थापित करके उनके विकास को प्रभावित किया। यह प्रवृत्ति 1900 में राजकुमार ईतो के अधीन रिककेन से युकाय की स्थापना के साथ मुखरित हो गई। 1913 में गठित रिककेन दोशिकाय के साथ यह प्रक्रिया अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई। एस्केल्पिनो द्वारा प्रकट किए गए इन विचारों की रूपरेखा के अंतर्गत राजनीतिक दलों की भूमिका को जापानी राजनीति में समझा जा सकता है। प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में ईतो की नियुक्ति जापानी संविधान के लागू किए जाने से पहले ही हो चुकी थी। 1890 के बाद चुनाव नियमित अंतराल से होते रहे और मंत्रिमंडल बनते रहे। निम्नलिखित सारणी से यह स्पष्ट होता है कि इन मंत्रिमंडलों का गठन बहुत जल्दी जल्दी हो रहा था। प्रधानमंत्रियों के रूप में अनेक व्यक्तियों ने सरकार चलाने का प्रयास किया। प्रतिनिधि सभा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में शुरू से ही राजनीतिक दलों ने सरकार को अपने प्रति जिम्मेदार ठहराने का हर प्रयास किया। मेजी जापान में नियुक्त प्रधानमंत्रियों की सारणी प्रधानमंत्री के नाम का क्रम वर्ष टिप्पणी पहला ईतो 1885 मेजी संविधान के अनुमोदन से पहले उनकी नियुक्ति की गई। दूसरा प्रधानमंत्री रूरोदा 1888। तीसरा यामागाता 1889। चौथा मत्सुकाता 1891। पांचवा ईतो 1892 दूसरी बार मंत्रिमंडल का गठन। मत्सुकाता 1896 दूसरी बार मंत्रिमंडल का गठन। ईतो 1896 तीसरी बार मंत्रिमंडल का गठन। ओकुमा 1898 प्रथम दलीय मंत्रिमंडल का गठन। ईतो 1900 चौथी बार मंत्रिमंडल का गठन। दसवां कत्सुरा तोरो 1901। ग्यारहवां साए ओंजी 1906। बारहवां कत्सुरा 1908। तेरहवां शाये ओंजी 1911। जब 1890 में प्रथम डायट का गठन किया गया तब राजनीतिक दलों ने भाषण देने की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग करते हुए सरकार की खुलेआम भर्त्सना की। सरकारी बजट को घाटा दिया गया। विपरीत परिस्थितियों में यामागाता ने शीघ्र ही त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद वित्तीय मंत्री मत्सुकाता को मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित किया गया। उन्होंने ज्यूतो उदार दल का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से इस दल के अध्यक्ष इतागाकी को सरकार में शामिल होने का आमंत्रण दिया, परंतु यह योजना असफल रही। इसके बाद मत्सुकाता ने विकासशील दल काइशिंतो के विश्वास को जीता और उसकी सरकार ने आम नागरिकों को वे सभी अधिकार देने का आश्वासन दिया जिनका उल्लेख संविधान में हुआ था, परंतु उसे भी शीघ्र ही त्यागपत्र देना पड़ा। वास्तव में उस समय की राजनीति में गैनरो यानी ज्येष्ठ राजनेता का प्रभाव इतना अधिक था कि राजनीतिक दलों का विकास संभव ही नहीं था। यह प्रवृत्ति ईतो और यामागाता के व्यवहार में अस्पष्ट प्रतीत होती थी। चीन जापान युद्ध 1894 से 95 ने उदार दलों और सरकार के बीच जिस गठबंधन को जन्म दिया वह कुछ समय तक ही चला। राजनीतिक दल सरकार में अधिक से अधिक हिस्सा चाहते थे। उदाहरण के लिए 16 नवंबर 1895 में ज्यूतो के अध्यक्ष इतागाकी ने ईतो को अपना समर्थन देने का निर्णय किया। इसके विरोध में काइशिंतो ने विरोधी गुटों का समर्थन प्राप्त किया और सरकार का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। इसी तरह 1897 में जब ईतो ज्यूतो दल को दिए गए वायदों को पूरा करने में असफल रहे तब यह दल शिम्पोतो के साथ मिलकर सरकार का विरोध करने लगा। धीरे धीरे दलीय नेताओं द्वारा यह महसूस किया गया कि प्रशासन को चलाने के लिए गैनरों का सहयोग प्राप्त करना जरूरी था। इस उद्देश्य की पूर्ति 1900 में स्थापित रिकेन सेयुकाय द्वारा की गई। रूसी जापानी युद्ध 1904 से 1905 ने एक बार फिर सभी पक्षों को एक साथ कर दिया। तैशो काल में राजनीतिक दल और सरकार पॉलिटिकल पार्टीज एंड गवर्नमेंट इन द तैशो पीरियड। प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत जापान में उस परिवर्तन को देखा गया जिसे तैशो लोकतंत्र की संज्ञा दी गई है। युद्ध के दौरान जापान को जो आर्थिक लाभ हुआ उसका प्रभाव राजनीतिक दलों पर भी देखा गया। जिस संकीर्ण कुलीन तंत्रीय सत्ता का प्रतिनिधित्व गैनरो द्वारा किया जा रहा था उसका अब पतन हो गया। विभिन्न राजनीतिक दलों को मिलने वाले जन समर्थन का विस्तार हुआ और इन दलों की राजनीति में भूमिका बढ़ गई। इस समय में अनेक राजनीतिक दलों जिसका विवरण नीचे दिया गया है द्वारा मंत्रिमंडलों का गठन किया गया। और अनेक प्रधानमंत्री भी इन्हीं राजनीतिक दलों से आए। केवल हारा केई ही एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जो गैर उपाधि प्राप्त व्यक्ति थे। क्रम: प्रधानमंत्री का नाम, वर्ष, राजनीतिक दल का नाम। कतसुरा 1912, से युकाए, प्रधानमंत्री एडमिरल यमगाता, प्रधानमंत्री एडमिरल यामगाता, वर्ष 1912, कोकुमिंतु दल से संबंधित थे। प्रधानमंत्री ओकुमा शिगेनोबु, वर्ष 1914, दोशीकाई दल। जनरल तोराउची 1916, दोशीकाई दल। हारा केई 1918, से युकाई दल। छठा प्रधानमंत्री ताकेशी 1921, से युकाई दल। प्रधानमंत्री कोबे हयो 1921 और कातो 1924 दोनों नौसेना से आए थे और इन्होंने गैर दलीय मंत्रिमंडलों का गठन किया। नौवा प्रधानमंत्री कियू उरा के ईगो, वर्ष 1924, कैन कयू काय। इस दल के सभी सदस्य पियर्स सभा से आए थे और इन्होंने गठित मंत्रिमंडल में हिस्सा लिया। दसों प्रधानमंत्री कातो ताकोही, वर्ष 1924, यह विभिन्न दलों के गठबंधन का नेता था। 11वां प्रधानमंत्री कातो कोमेई, वर्ष 1925, कैनसे इकाय दल से थे। 12वां प्रधानमंत्री वाका तसुकी, वर्ष 1929, कैनसे इकाय दल से थे। तेसो काल में राजनीतिक दलों के नामों में परिवर्तन भी हुआ। 1927 तक कैनसे इकाय को मिनसे ईतो कहा जाने लगा। कोकुमिंतो का नाम बदलकर काकुशिंतो कराबू और सेयुकाय का ओबू सेयुकाय रख दिया गया। इन वर्षों की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि सरकार में राजनीतिक दलों की प्रभुता थी। 1924 से 1936 के बीच दलीय मंत्रिमंडलों का निर्माण हुआ और इन्होंने सफलतापूर्वक कार्य किया। इसके पीछे अनेक कारण थे। प्रतिनिधि सभा का जब डायट पर अधिकार और प्रभाव अच्छी तरह से स्थापित हो गया था, गैनरो जो एक लंबे समय तक प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति कर रहे थे, उनकी शक्ति अब समाप्त हो गई। वास्तव में अंतिम गैनरो शे ओंजी ने सलाहकार परिषद की शक्ति को कम करने का भरसक प्रयास किया। इसके अलावा राजनीतिक दल और नौकरशाही मिलकर कार्य करने के लिए तत्पर थे। राजनीतिक दलों ने न्याय व्यवस्था पर भी अपने प्रभाव को स्थापित किया। हारा ने इस दिशा में सफलता प्राप्त की और ज्यूरी व्यवस्था की शुरुआत भी की। मेजी शासनकाल में प्रारंभ से ही सेना को विशेष स्थान मिला था। इसका गठन जापान को विदेशी हमलों से बचाने के लिए किया गया था, परंतु धीरे धीरे सैन्य अधिकारियों ने राजनीतिक ढांचे में अपने हस्तक्षेप को बढ़ाना शुरू कर दिया। जब जापान एक साम्राज्यवादी देश के रूप में उभरा, तब सेना का प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होने लगा। तैशो काल में न केवल अनेक सैनिक अधिकारी प्रधानमंत्री ही बने, बल्कि 1930 के दशक तक उनमें सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष और तीव्र होने लगा था। 26 फरवरी 1936 को जवान सैनिक अधिकारियों ने भीतरी टोक्यो पर कब्जा करते हुए वित्तीय मंत्री, सलाहकार परिषद के लॉर्ड और अन्य नेताओं की हत्या कर दी। उन्होंने मजाकी के अधीन सरकार बनाने की मांग की, परंतु असफल रहे। हिरोता ने इस घटना के बाद सरकार का गठन तो किया, परंतु सेना की इच्छाओं के सम्मुख यह नतमस्तक हो गए। अगस्त 1936 के हिरोता की सरकार ने राष्ट्रीय राजनीतिक पुनर्गठन, नेशनल पॉलिटिकल रिनोवेशन के लिए उस 7 सूत्रीय योजनाओं की स्वीकृति दे दी, जिसके अंतर्गत सरकार अस्त्र शस्त्रों में वृद्धि, शिक्षा पर अंकुश व उच्च दरीय करों को लागू करने के साथ साथ युद्ध के लिए सामान भी एकत्रित कर सकती थी। हिरोता ने मंचूरिया में सैनिक कार्यों का भी अनुमोदन कर दिया। 1937 में जनरल हयाशी के अधीन गठित मंत्रिमंडल केवल 4 महीने ही काम कर पाया। जून 1937 में राजकुमार कोनो ने मंत्रिमंडल गठित किया। नवंबर 1936 में जापान ने कोमिंतर्न विरोधी एंटी कोमिंतर्न संधि पर अपने हस्ताक्षर कर दिए थे, और जब 1937 में जापान ने चीन के खिलाफ युद्ध की घोषणा की तब ब्रिटेन और अमेरिका द्वारा इसका विरोध नहीं किया गया। जापान अब साम्राज्यवादी गतिविधियों में उलझ चुका था और उसने दूसरे विश्व युद्ध में हिस्सा लिया। देश के अंदर राजनीतिक दलों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया था। अक्टूबर 1940 में इन राजनीतिक दलों का स्थान इंपीरियल रूल असिस्टेंट एसोसिएशन या साम्राज्यिक शासन की सहायक संस्था ने ले लिया। इसमें अनेक राजनीतिक दल शामिल हो गए और इसे राष्ट्रीय नीतियां निर्धारित करने वाली सर्वोच्च इकाई के रूप में स्वीकार किया गया। 1945 के बाद ही एक बार फिर राजनीतिक दल उभरे और वे सरकार के कार्यों को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे। पृष्ठ संख्या 68, निष्कर्ष। 1940 में जिस तरह अचानक राजनीतिक दलों का अस्तित्व नगण्य हो गया था और जिस तरह जापानी सरकार में उनकी स्थिति कमजोर बनी रही, उसे देखते हुए अनेक इतिहासकारों द्वारा राजनीतिक दलों के आधार और जापान में लोकतंत्र के विकास की ओर अपना ध्यान दिया गया है। ब्रिटेन में राजनीतिक दल 17वीं शताब्दी में अस्तित्व में आए थे। हिग और टोरी दलों ने अपने राजनीतिक सिद्धांतों को प्रतिपादित किया और वे अंग्रेजी राजतंत्र के अधिकारों को सीमित करने में सफल रहे। 1688 की शानदार क्रांति ने संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की। इसके बाद साधारण सभा में अपने निर्वाचित सदस्यों की संख्या के आधार पर इन राजनीतिक दलों ने सरकारों का गठन किया। इसी के साथ मताधिकार के विस्तार के साथ साथ इन राजनीतिक दलों में अधिक से अधिक व्यक्ति शामिल होने लगे। जापान में इस तरह से विकास नहीं हुआ था। जब जापान में राजनीतिक दलों का जन्म हुआ था तब वे भी अपने विचारों को प्रकट कर रहे थे और विभिन्न सामाजिक वर्गों से समर्थन प्राप्त कर रहे थे, परंतु जापानी प्रशासनिक व्यवस्था का ढांचा और राजनीतिक दलों की मूलभूत कमजोरियों ने यह स्पष्ट कर दिया कि ये राजनीतिक दल आम लोगों का प्रतिनिधित्व करने में असमर्थ थे। नौकरशाही का प्रभाव बहुत अधिक था और अधिकांश नियुक्तियां राजनीतिक दलों के नियंत्रण से बाहर थी। गैनरों ने एक लंबे समय तक सरकार को प्रभावित किया और प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति की। प्रारंभिक चरण में राजनीतिक दलों ने शाही निरंकुशता और जन लोकप्रिय सरकार के द्वैध सिद्धांतों को प्रतिपादित तो किया, परंतु प्रमुखता प्रथम सिद्धांत को ही दी। इसके अलावा शक्ति का केंद्र सम्राट था और राजनीतिक दलों में निहित गुटबंदी ने यह स्पष्ट कर दिया कि स्थापित व्यवस्था में कोई क्रांतिकारी परिवर्तन संभव नहीं था। राजनीतिक दल सरकार में हिस्सा लेने में अधिक दिलचस्पी दिखा रहे थे और यही कारण था कि 1930 के दशक में वे सैनिक प्रभाव में आ गए। जब एक बार सेना ने शक्ति पर अपना अधिकार कर लिया तब इन राजनीतिक दलों का अस्तित्व नाममात्र होकर रह गया।